कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं।
ओम शांति। हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान भगवान के बच्चे यहाँ बैठे हैं और हम सब ने बाबा से जी भर के मिलन मनाया, अपनी आत्मा की झोली भरी, सदा सदा के लिए आत्मा के अंदर अविनाशी खुशी, शक्ति और नशा हम सब ने भरा। आज हमें सुनाई नहीं दे रहा। आज हमको आप सबके सामने कुछ बातें शेयर करने का बाबा ने आदेश दिया, वो है स्वमान से, स्वमान के द्वारा पुरुषार्थ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लास तो नहीं, परंतु अनुभव के कुछ बातें हम आप सबके सामने शेयर करते हैं। स्वमान क्या है? बाबा ने मुझे आत्मा के प्रति दिया हुआ मान, बाबा ने मुझे आत्मा को दिया हुआ सम्मान या श्रेष्ठ स्मृति ही स्वमान है। हम हर दिन मुरली के द्वारा बहुत सारे श्रेष्ठ स्वमान को सुनते हैं और उनमें से अनेकों श्रेष्ठ स्वमान का हम अभ्यास भी करते हैं। वैसे तो बाबा की मुरली में हर दिन बहुत सारी स्वमान मिलते हैं। कई बार हम मुरली सुनने के बाद सारी मुरली को तो याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन उनमें से कोई न कोई स्वमान को अगर ले लें, उसको सारा दिन याद रखना सहज होता है। और स्वमान ऐसा चीज है जिसको याद करने से, बार बार बुद्धि के अंदर चिंतन करने से उसका नशा चढ़ता है, उसकी गहराई में हम चले जाते हैं। और बाबा के उस महावाक्य का जो रियल अर्थ है उसको हम समझ पाते हैं, उस अर्थ स्वरूप में भी हम टिक सकते हैं और हमारे अंदर वो स्मृति जागृत हो जाती है जो स्वमान में है। वो स्मृति हमारे अंदर से जागृत होती है और जागृत जैसे ही होती है हमारे अंदर सामर्थ्य भी आ जाता है, स्मृति से सामर्थ्य आती है। तो पुरुषार्थ को सरल करने का, अच्छा पुरुषार्थ करने के कई तरीके हैं, उनमें से हमने देखा ये एक अच्छा तरीका है। हर दिन की मुरली में से कुछ न कुछ स्वमान को निकाला जाए और उस स्वमान को याद रखा जाए और सारे दिन में बीच बीच में उसको अंदर ही अंदर रिपीट किया जाए। अगर हम रिपीट करते हैं तो जितना बार अपने को वो स्वमान याद दिलाते हैं हम उसकी गहराई में चले जाते हैं, और जितनी गहराई में जाते हैं उतना ही उसका अर्थ हमें समझ में आने लगता और उस स्वमान के आधार पर हमारे अंदर सामर्थ्य अर्थात शक्ति भी आने लगती है। तो स्वमान से पुरुषार्थ में कैसे फायदा मिलता, इसकी दो चार बातें बताती हूँ। सबसे पहले तो स्वमान से हमारे अंदर नशा चढ़ता है। स्वमान से नशा चढ़ता है और नशा एक शक्ति है। नशे में शक्ति होती है, चाहे दुनिया भी नशा हो उसमें भी थोड़ी देर के लिए शक्ति होती है। कोई नशा पीते हैं वो नेगेटिव नशा है, परंतु नेगेटिव नशा होते हुए भी जब व्यक्ति नशा पीता है थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी उसको प्राप्त हो जाता है। एक एक व्यक्ति चार चार व्यक्ति का काम करने की सामर्थ्य रखता है जब तक नशा है। वही चीज बाबा की मुरली का, स्वमान का जो नशा है, हम सबके अंदर में बहुत शक्ति पैदा कर देती है। और वास्तव में वो शक्ति हमारे अंदर होती है, वो जागने लगती है। इसलिए स्वमान की स्मृति से हमारे अंदर नशा आता है, नशा चढ़ता है, नशा हमारी शक्ति को बढ़ा देता है। और नशा ही वास्तव में इस ईश्वरीय पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, इसको घटक कहते हैं, वो आगे बढ़ाता है हमको। जिसको नशा होगा वो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ में आगे बढ़ता, जिसको नशा रहता है वो माया को सहज ही पार कर सकता है। तो स्वमान कैसे नशा चढ़ाता है, जैसे कोई भी एक बाबा का दिया हुआ स्वमान याद करें। बाबा ने कहा, एक सिंपल सा स्वमान, बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चे हो। अब ये शब्द अगर, ये एक महावाक्य अगर हम याद रखें, मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा प्रेम का पात्र हूँ, इस बात को अगर हम थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो हमें बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आने लगता कि प्रभु के प्रेम का पात्र माना मेरे अंदर वो पात्रता है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी है जिसके कारण मैं प्रभु के प्रेम का पात्र बन गया। उसने मुझे पात्र समझा इसलिए सिलेक्ट किया, उसने मुझे अपना बच्चा बनाया, इसलिए वो मुझे रोज मुरली सुना रहा है, वो मुझे पालना दे रहा है, वो मेरा शिक्षक बन के पढ़ा रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है। वाह रे मैं कौन। तो देखिए नशा चढ़ गया ना, मैं कौन हूँ। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, सभी उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें से स्पेशल हूँ, मैं प्रभु प्रेम का पात्र हूँ। ये इतना सा स्वमान हमारे अंदर क्या ला देता है, हमको फीलिंग्स आने लगता है कि मैं कोई स्पेशल आत्मा हूँ, इस पूरे कल्प में मेरा कोई स्पेशल पार्ट है, पूरे ड्रामा के अंदर मेरा स्पेशल रोल है, हर जन्म में मैंने कुछ न कुछ स्पेशल कार्य किया था, बहुत अच्छी अपनी पार्ट अदाई की थी, मैंने भक्ति में भी अच्छा भक्ति किया होगा, सत्युग त्रेता में भी अच्छा राजा बन के रहा होगा, और अभी भी मैं बाबा का प्रभु प्रेम का पात्र हूँ, उसने मुझे लायक समझा, वाह मैं। ये स्मृति बार बार जब मन में आती है, गहराई में जाते हैं, हमारे अंदर क्या आने लगता है कि वाह मैं तो साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो जब विशेष आत्मा समझने लगा, विशेष कार्य करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई। बाबा ने जो महावाक्य दिए, बाबा ने जो कार्य दिया, उस कार्य को करने के लिए कई कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन है, ये पुरुषार्थ करना हमारे लिए संभव थोड़ी ही है, बाबा ने तो कह दिया। कई कहते हैं ये बाबा मामा के लिए सहज था, हम सब के लिए थोड़ी ना सहज है, माना अपने आप को साधारण समझते हैं। लेकिन जब हमने ये महावाक्य याद किया कि बाबा का मैं स्पेशल बच्चा हूँ, प्रभु प्रेम का पात्र आत्मा हूँ, करोड़ों में से कोई एक सिलेक्टेड आत्मा हूँ जिस पर बाबा की नजर पड़ी, तो मैं भी तो विशेष सामर्थ्य वाला आत्मा हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ। बाबा की कोई भी श्रीमत का पालन करना मेरे लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हर जन्म में स्पेशल पार्ट प्ले करके आया हुआ हूँ। देखिए हमारे अंदर क्या आ गया, सामर्थ्य आ गई। तो क्या होता है, स्वमान से हमारे अंदर नशा चढ़ता है। नशा क्या देता है, खुशी देता है, नशा हमारे अंदर शक्ति भर देता है। नशा जब होता है हम बहुत स्पीड से चल सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होता। तो स्वमान को याद रखने से एक तो फायदा ये रहता कि हमारे अंदर नशा रहता है, दूसरा स्वमान को याद करने से सच में कहें हम अभिमान और अपमान ये दोनों माया से बचे रहते हैं। अभिमान और अपमान इन दोनों चीज से बचे रहना रहने के लिए बहुत श्रेष्ठ तरीका है स्वमान में रहना। आज देखिए हर व्यक्ति मान का भूखा है, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए। सम्मान पाना किसको अच्छा नहीं लगता, हर एक को अच्छा लगता है। हम सब भी दुनिया में सम्मान चाहते थे, लेकिन जब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हमें सिखाया बच्चे कि सम्मान चाहने से या मांगने से मिलने वाला चीज नहीं है, सम्मान देने से मिलने वाला चीज है। तो सम्मान देते रहो, खुद न चाहो, इसके लिए क्या चाहिए, स्वमान में स्थित होना चाहिए। स्वमान जब हमने समझा कि स्वमान बाबा ने मुझे दिया हुआ मान है, स्वयं भगवान मुझे मान दे रहा है, भगवान मुझे सम्मान दे रहा है, तो मुझे किसी और के सम्मान की कोई जरूरत, और के मान की कोई जरूरत नहीं है। हम दूसरों से मान मांगने के इच्छुक नहीं होंगे, मान पाने के इच्छुक नहीं होंगे। जब हम मान पाने के इच्छुक नहीं होंगे तब हम मान से भी बचे रहेंगे, अभिमान से भी बचे रहेंगे और अपमान से भी बचे रहेंगे, क्योंकि स्वमान है आत्मा का उचित प्लेटफॉर्म, आत्मा का असली सम्मान। बाबा ने हमें कितना अच्छा सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया। बाबा क्या कहते, बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, बच्चे तुम तो मेरे दिल तख्त नशीन हो, बच्चे तुम तो मेरे मस्तक के मणि हो, तुम मेरे वफादार बच्चे हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, तुम मेरे फेथफुल बच्चे हो। बाबा ने हमें फेथफुल समझा, बाबा ने हमें इतनी इतना गुणगान किया। बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बगैर बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कुछ बाबा ने कहा ये तो मुझे आत्मा को बाबा ने सम्मान दिया। बाबा ने दिया हुआ सम्मान को अगर मैंने स्वीकार करना सीख लिया तो मैं अपने आप सम्मान की स्टेज पर बैठ गया। जब बाबा के सम्मान को मैंने स्वीकार किया तो मनुष्यों के द्वारा जो सम्मान मिलता है उस सम्मान के प्रति मेरे दिल में कोई भी इच्छा आशा भूख नहीं रहेगा। आज दुनिया में दुख मनुष्य को इस कारण मिलता है कि वो आशा रखते हैं कि मुझे सम्मान मिले, और जब सम्मान नहीं मिलता तो उनको खराब लगता है। लेकिन जिसने स्वमान को समझा, स्वमान अर्थात बाबा का दिया हुआ मान में टिकने का अभ्यास सीखा, वो तो सदा ही सम्मान की सीट पर बैठता है, क्योंकि उसको भगवान का दिया हुआ सम्मान स्वीकार है। तो सम्मान में रहने वाला अभिमान से बचा रहता है। अभिमान है मिथ्या मान, स्वमान है सत्य मान, आत्मा का रियल मान। बाबा ने जो कुछ कहा वो सत्य कहा, और अपमान क्या है, जो हम उस सत्य मान से नीचे चले जाते हैं वो अपमान है। बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे स्वमान में रहो तो अभिमान और अपमान से बचे रहेंगे। अभिमान किसको ज्यादा तंग करता है, जिनको स्वमान में टिकना नहीं आता है। अभिमान माना वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरों के तुलना में मैं अच्छा, दूसरों के तुलना में मैं ज्यादा ज्ञानी, मैं ज्यादा योगी, मैं सेवादारी, मैं बुद्धिमान, मैं ये। तो ये जो मैंपन है ये तो देह के साथ रिलेटेड है, ये मिथ्या है। मिथ्या मान में रहना और दूसरों से भी वो उस मान के अनुरूप सम्मान चाहना, यही तो अभिमान है। और जब अभिमान लेकर के व्यक्ति घूमता है, अपने आप को काफी ऊंचा समझता है, मैं जे मेरे जैसा और कोई नहीं, और जो अभिमान लेके घूमता है उसको बहुत जल्दी अपमान का फीलिंग होता है। देखिए जो अभिमान में चलता है ना, उसको अगर कोई अपमान न भी करे तो उसको तो भी अपमान की फीलिंग्स होती है। कोई समझ लीजिए अभिमान वाला व्यक्ति इधर से जा रहा है, उसके सामने से कोई और परिचित एक व्यक्ति गुजरा, हो सकता वो बहुत बिजी था, बहुत ही जल्दीबाजी में था, उसने उसको देखकर मुस्कुराया नहीं या ओम शांति बोला नहीं, उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अभिमान वाले को लगा देखा मेरे को देख करके इसने ओम शांति भी नहीं बोला, माना मेरा जो मान है ना वो हानि हो गया, मेरा मान हानि हो रहा है। या अभिमान वाला व्यक्ति सोचता है कि उसको ही चेयर आगे करके दिया देना चाहिए, कोई और बैठे रहे और उसको चेयर न दे उनको अपमान का फीलिंग होता, हालांकि उनकी अपमान किसी ने की नहीं, लेकिन उनको अपमान अपने आप होने लगा, अपने आप अपमान फीलिंग होने लगा। ये क्या है? अपमान की फीलिंग बिना कारण ही अगर होता है, समझना चाहिए कि अभिमान की बीमारी लगी हुई है। इसलिए अभिमान वाले को बिना कारण ही अपमान का अनुभव होता है, और सचमुच अपमान होता है, उस थोड़ी सी अपमान में उसको ज्यादा अपमान होता है, बहुत दुख फील होता है, बहुत आत्मा अंदर से कमजोर फील करती है, इससे आत्मा की शक्ति क्षय होती है। हमने क्या देखा, इस ज्ञान मार्ग में कई आत्माएं शुरू में अच्छा चलती हैं, अच्छा पुरुषार्थ भी कर लेती, सेवा में भी काफी आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन जब सेवा या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं उनके अंदर धीरे धीरे अभिमान भी डेवलप होता है। वो सोचने लगते कि मैंने इतना सेवा कर लिया, दूसरों की तुलना में मैं बहुत ज्यादा सेवादारी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्यादा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो बहुत काम का हूँ, मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। जब उसके अंदर ये बात आने लगता, माना धीरे धीरे अभिमान आने लगा, अभिमान बढ़ने लगा, और जब अभिमान बढ़ने लगा तो वो सबके द्वारा सम्मान चाहता, मैं जहाँ भी जाऊँ हर कोई उठ के खड़े हो जाए, मुझे चेयर ऑफर करे, हर जगह मुझे फ्रंट लाइन में बैठने को मिले, हर जगह मुझे स्टेज में चढ़ने को मौका मिले, हर जगह माइक मिले, बोलने को मिले, हर जगह सब कोई मेरी वाहवाही करे, अंदर ही अंदर उसके अंदर ये इच्छा डेवलप होने लगती, उसको पता भी नहीं चलता, वो ऐसा उसका माइंडसेट बन जाता है, माना वो अभिमान की सीढ़ी से ऊपर जा रहा है। परंतु ऐसा संभव है क्या कि उसको हर जगह सम्मान मिले, हर जगह कोई वाहवाही करे, हर जगह ही उसका कोई नाम ले? अगर कहीं नहीं लेता कोई, तो उसको लगता है कि मेरा यहाँ अपमान हो रहा है, मैं इतना बड़ा सेवाधारी, मैं इतना पोस्ट पोजीशन वाला, मैं इतना योगी, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना अच्छा गुणवान, लेकिन मेरा यहाँ कोई कदर नहीं हो रहा है, कोई मेरा नाम भी नहीं ले रहा है, कोई मुझे ऑफर भी नहीं कर रहा है बैठने को, कोई मुझे पूछताछ भी नहीं कर रहा है, तो उसको जल्दी दुख की फीलिंग होती है। तो देखिए ये क्यों हुआ, जब ये दुख की फीलिंग होने लगी, अपने को अपमान का फीलिंग आने लगा, तब वो व्यक्ति, वही पुरुषार्थी, वही सेवाधारी अपने आप को संगठन से थोड़ा किनारा करने लगता है, सोचता है जहाँ ज्यादा भीड़ होती है वहां मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरी वहां कोई कदर नहीं होती, कोई मुझे पहचानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, इसलिए जहाँ बहुत भीड़ है वहाँ नहीं जाना होता है, या जहाँ सब कोई सेवा कर रहे होते हैं वहाँ मुझे नहीं करना होता है, ये सेवा तो सब आम आत्मा लोग करते हैं, मैं तो स्पेशल आत्मा हूँ। जब ऐसा सोचने लगता है तो क्या होता है, वो संगठन से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाता है, और जब ब्राह्मण संगठन से दूर होने लगा, वही आत्मा की गिरावट शुरू होती है, आत्मा अंदर ही अंदर खोखलापन अनुभव करने लगती है। तो ये किनारा, संगठन से किनारा, ये क्यों हुआ? किसी ने किनारा नहीं किया, अभिमान के कारण आत्मा अपने आप को किनारा करने लगा, और किनारा करने से नुकसान अपना होने लगा, किनारा करके अकेला बैठने लगा, चुपचाप बैठने लगा, पीछे बैठने लगा, वो चाहता है कि सब कोई मेरा नाम ले, रिक्वेस्ट करके सामने बुलाए, सब सेवा कर रहे हैं, कोई मेरा नाम लेकर के बुलाए तो मैं जाके सेवा करूं, मेरी भी कोई इज्जत होनी चाहिए, तो वो नाम का इच्छुक बनने लगा, नाम का भोग उसके अंदर बढ़ने लगा। और जब देखते हैं संगठन में भी कई बार कि बाबा की सेवा है, जो दिल से आगे आके करे वो करेंगे, और जो चुपचाप बैठे रहेंगे, हो सकता है उनको सेवा न भी मिले, वो बैठे रहे, तो उनको लगेगा कि मेरी इतनी स्पेशलिटी काम में नहीं आ रही है, मैं तो बहुत यूजफुल हूँ, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मेरी कोई कदर नहीं कर रहा है। तो देखिए, स्पेशलिटी है तो उसको काम में लगाना है, परंतु काम में लगाने के लिए निर्माण बनना बहुत जरूरी है। जो निर्माण बन सका वही इस यज्ञ में आगे जा सकता है, जो निर्माण बन सका वही बाबा के दिल तक तक पहुंच सकता है, जो निर्माण बन सका वही जीवन की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। परंतु निर्माण बनने के लिए स्वमान में टिकना बहुत जरूरी है। जो स्वमान में टिकता है उसको तो बाबा के द्वारा दिया हुआ सम्मान ही दिल में भरा हुआ रहता है, उसका दिल सदा भरपूर संतुष्ट रहता है। वो नम्र बनना जानता है, झुकना जानता है, सबके बीच में मिक्सअप होना जानता है, सबके साथ एडजस्ट होना जानता है, साथी संगठन सबके बीच में किसी की गलती होने पर क्षमा करते हुए उसको साथ लेके चलना जानता है। लेकिन अभिमान वाला क्षमा कर नहीं सकता, अभिमान वाला सदा स्टेज के ऊपर अपने आप को देखता है, बाकी सबको स्टेज के नीचे देखता है। इसलिए ये अभिमान और अपमान वाली दो डेंजरस बीमारी से बचने का तरीका है स्वमान में टिकना। बाबा ने बहुत अच्छा हमें पुरुषार्थ दिया। ज्ञान मार्ग में जैसे जैसे पुराने होने लगते हैं, ये कॉमन बीमारी है, ये कॉमन बीमारी बहुत ब्राह्मणों को पकड़ती है, और जिसके कारण जो ब्राह्मण अच्छे उम्मीदवार भी होते हैं वो कई बार पीछे हट जाते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में हम सदा आगे के आगे चलते रहें, सदा हमारी पुरुषार्थ की गति बढ़ती रहे, गति कम न हो, और हम समय पर मंजिल तक पहुंचें, इसके लिए ये स्वमान का अभ्यास हमें बहुत बड़ा मदद करता है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा। तो क्या करना है कि स्वमान, बाबा ने दिया हुआ मान, ये सोचना है कि मुझे तो बाबा सम्मान दे रहा है ना, बाबा का जितना सम्मान तो और कोई नहीं दे सकता। भगवान जिसको सम्मान दे उसको और किसी से सम्मान पाने की इच्छा भी नहीं रखनी है। बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा ने मुझे कहा अरे तुम बच्चे तो मेरे श्रेष्ठ बच्चे हो। बाबा ने इतने अच्छे अच्छे महावाक्य उच्चारण किए, ये महावाक्य तो सत्य है। बाबा ने तो कोई मुझे केवल बोलने के लिए कहा ऐसी बात नहीं है। तो एक एक महावाक्य को जब हम गहराई से सोचते हैं तब हम अभिमान अपमान से भी बचे रहते हैं और हमारे अंदर वो स्वमान का नशा आगे बढ़ने लगता है। स्वमान हमको बहुत आगे 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 ले जाता है। स्वमान वाला निर्माणकारी होता है, निर्माण भी होता है, मान चाहने की इच्छा नहीं होता, और उसके हर कदम निर्माणकारी माने कंस्ट्रक्टिव होते हैं। स्वमान वाला अच्छा नहीं करता, वो सोचता है मुझे करते जाना है, मुझे देते जाना है, जितना करें और करना है और करना है और करना है। देखिए लौकिक में भी जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अच्छा मार्क्स पाने के बाद भी सोचते हैं कि नहीं अभी थोड़ी और कमी रह गई, आगे नेक्स्ट एग्जाम में मुझे और पाना है, और मार्क्स लेना है, और पढ़ना है, ऐसा जो सोचते हैं वो और डेवलप करते हैं। और जो स्टूडेंट पिछले परीक्षा में थोड़ा अच्छा मार्क्स मिल गया और सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल गया, जो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, देखा जाता है कि नेक्स्ट परीक्षा में उनको इतना मार्क्स नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। ये भी ऐसा ही है, स्वमान में टिकने वाला सोचता है कि मैंने जितना किया वो तो कुछ नहीं, मुझे तो बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने कितना किया, मम्मा ने कितना किया, दादियों ने कितना किया, मैंने जो किया वो क्या है, मुझे तो और करना है, मुझे और करना है। और अभिमान वाला सोचता है कि मैंने बहुत कर लिया, वो दूसरों के साथ अपने को तुलना करता है, ऊंचे वालों को नहीं देखता, नीचे वालों को देखता, उसने क्या किया, उसने क्या किया और मैंने क्या किया। तो नीचे वालों को देखने वाला नीचे की तरफ जाता है, ऊंचे वालों को देखने वाला ऊंचाई की तरफ जाता है। स्वमान हमको ये दिलाता है, ये स्मृति दिलाता है कि बाबा ने ये कहा है, माना मुझे ऐसा सचमुच में बनना है। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, मुझे भी करना है। हम सब एक दूसरों को देख करके सीखते हैं, इसलिए स्वमान में रहने वाला दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। स्वमान में रहने वाला दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, कि उसको देख करके दूसरों को भी अच्छा पुरुषार्थ करने का प्रेरणा मिलता है, और जो अभिमान में आता है दूसरों की भी उमंग उत्साह को कम कर देता है। इसलिए अभिमान और अपमान तो का तो उच्चारण भी नहीं करना है, हमें स्वमान से आगे बढ़ना है। हर दिन सवेरे ही अगर हम एक स्वमान बाबा का दिया हुआ याद रखें और उसको बार बार याद करें, रिपीट करें, तो उसकी गहराई में हम अपने आप चले जाएंगे और वैसी ही हमारे अंदर एक माइंडसेट तैयार होगी, और जैसा स्वमान होगा वैसे हमारे चेहरे में, वैसे हमारे नयन में, वैसे हमारे चलन में उसका क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। वैसे हमारे विचार चलेंगे, जैसा विचार चलता है वैसा ही चेहरा और चलन भी बन जाता है। तो स्वमान का धारी का चेहरा चमकदार होगा, उसके चलन में रॉयलपन दिखाई देगा। वो सोचेगा अभी तक मैंने जो किया कुछ नहीं है, मुझे तो और करना बाकी है, और करना है, और करना है। तो वो सदा अपनी धुन में रहेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। स्वमान वाला दूसरों को नहीं देखेगा। दूसरी बात है, जो स्वमान की सीट पर रहता है वो दूसरों को सही सम्मान देता है। सही सम्मान स्वमान के आधार पर आत्मा को वो सम्मान की दृष्टि से देखता है। हर आत्मा के प्रति उसके दिल में आदर रहता है, और जिसके पास स्वमान का अभ्यास नहीं है वो तो अभिमान में जब आता है तो किसी को अच्छा देखता है और किसी को नीचा भी देखता है। अभिमान में रहने वाला को किसी की अच्छाई देख कर के वो प्रभावित हो जाता, क्योंकि सोचता ये तो बहुत अच्छे है और मैं तो इनसे कम, तो बुद्धि से वो किसी के सामने झुक जाता है, और या फिर किसी को अपने सामने झुकाना चाहता है। लेकिन स्वमान में रहने वाला खुद भी अपनी सम्मान में रहता, दूसरों को भी वो सम्मान देता है, आत्मिक सम्मान देता, आत्मिक दृष्टि से देखता है। तो स्वमान में रहने पर ये भी और एक फायदा है कि आत्मिक दृष्टि हमारी सदा बनी रहती है। बाबा ने हम सबको क्या सिखाया, इस पुरुषार्थी जीवन का आधार है आत्मिक दृष्टि, हर आत्मा के प्रति आत्मिक भावना। हर आत्मा स्पेशल है, वो हर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ स्पेशलिटी है। बाबा ने इनको चुना है, माना ये आत्मा भी श्रेष्ठ आत्मा है, पूजनीय है। ये स्मृति याद रखना, बाबा जैसे हमें कितनी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं। जिस दिन से हम बाबा के घर में आए, बाबा ने हम सब के प्रति सम्मान के बोल उच्चारण किए। पहले ही बाबा ने कहा मीठे बच्चे, फिर कहा बाबा ने कि बच्चे आप तो प्रभु प्रेम के पात्र हो, आप प्रभु की प्रिय संतान हो। बस बाबा ने हमारे अंदर कोई दुर्गुण नहीं देखा, लेकिन क्या देखा, हमारी स्पेशलिटी को देखा। बाबा कहते हर आत्मा स्पेशल है, माना माला का लास्ट मणका भी स्पेशल है, विशेष है। उसमें कम से कम ये विशेषता तो है कि उसने भगवान को पहचाना, बाबा को पहचाना, ये विशेषता तो है। आज दुनिया के अनेकों लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी बाबा को पहचानने की दृष्टि, बाबा को पहचानने की बुद्धि उनके पास नहीं है। बाबा का साधारण से साधारण बच्चा भी स्पेशल है, क्योंकि बाबा को तो पहचान लिया, तो ये कितनी बड़ी बात है जिसने भगवान को पहचान लिया। आज देखिए कितने बड़े बड़े VIPs भी बाबा के घर में आते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, स्टेज में भाषण भी देते हैं, सुनते भी हैं, बहुत अच्छा कह के चले जाते, लेकिन परमात्मा स्वयं आया है, स्वयं वो पिता बन के पढ़ा रहा है, हम उसके बच्चे, ये तो बात वो समझ नहीं सकते। तो वो दुनिया के जो इतने बड़े VIP, उससे भी बड़े VIP कौन है, बाबा के बच्चे हैं। बाबा के कोई भी साधारण से साधारण बच्चे भी उससे बड़े VIP हैं, क्योंकि उन्होंने असली बात को समझा कि भगवान दुनिया में आए हैं, ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं, हमें नया जीवन दे रहे हैं, मैं उसका बच्चा बन गया, ये तो समझा ना। तो जिसने समझा उसकी बुद्धि कितनी क्लियर है, उसके कर्म कितने श्रेष्ठ थे। इसलिए हर बच्चा ही स्पेशल है, उस स्पेशल की दृष्टि से अगर हम दूसरों को देखें तो तो दूसरों के प्रति भी हमारे दिल में बहुत अच्छी भावना रहेगी, और अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग ही अच्छा पुरुषार्थ कराती है। अभी तो समय ऐसा है, हमें अपने पुरुषार्थ को किस प्रकार अपने लक्ष्य तक ले जाना वही सोचना है। दूसरा और कोई समय अभी हमारे पास नहीं है, दायां बायां देखने का टाइम अभी नहीं है। मैं तो समझती हूँ, जैसे परीक्षा के हॉल में बैठते हैं तो क्या करते हैं, 3 घंटा हाथ में टाइम मिलता है। जब 3 घंटा हाथ में मिलता, सारा साल पढ़ा हुआ जो कुछ है वो उसमें लिखना पड़ता 3 घंटे में। तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद किसी स्टूडेंट को क्या इधर उधर देखने का टाइम होता है? होता है, वो देखता है। एग्जाम हॉल में कोई रो रहा भी होगा, कोई हंस रहा भी होगा, कोई बीमार पड़ गया होगा, कोई सेंसलेस हो गया होगा, होने दो। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, जो कुछ देखना है 3 घंटे के बाद देखूंगा। कोई मर भी गया हो तो वो देखेगा नहीं, सोचेगा छोड़ो मरने दो, अभी मुझे तो लिखना है भाई, 3 घंटे में मुझे अपना एग्जाम पूरा करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना है, इसलिए इस बीच में कुछ भी हो जाए मुझे किसी की ओर देखना नहीं है। क्योंकि 3 घंटा समय का एक एक सेकेंड भी हमारे लिए अमूल्य है। ये जब बुद्धि में रहता है तो इधर उधर वो देखता ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है उसको दिखाई नहीं देगा, वो केवल लिखेगा। जब 3 घंटा पूरा होगा उसके बाद पूछेगा क्या हुआ था। तो जैसे वो 3 घंटा अमूल्य समय है, इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में जब से हम बाबा के बच्चे बने, हमको जो भी समय मिला, जितना जिसको समय मिला उसके लिए वो 3 घंटा है। जब से हम बाबा के बच्चे बने तब से हमारा वो समय शुरू हो गया, जिस समय में हम जो लिखते हैं, जो कर्म रूपी कलम से लिखते हैं, वही हमारा पूरे कल्प के लिए भाग्य बन जाता है। तो ये इतना थोड़ा समय और इतना इम्पोर्टेंट समय है, तो इस समय में कौन क्या करता देखने का तो हमको है समय, है मौका, है नहीं है। जो ब्राह्मण इधर उधर देखते हैं, कौन क्या कर रहा है सोचते हैं, देखते हैं, उसके बारे में कुछ न कुछ बातचीत करते, चर्चा करते, टाइम वेस्ट करते, उनको ये होश नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा याद दिलाते, बच्चे ये कौन सा टाइम चल रहा है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, इस समय जो लिखा वही मार्क्स बन के आएगा खाता में, उस समय जो लिखा वही मार्क्स बन के आएगा ना। संगम युग के ये समय पर हमने जो कर्म से किया वही हमारा पूरे कल्प के लिए हमारी कमाई, वही फाइनल कमाई, फिर इसको दोबारा करेक्शन करने का भी टाइम नहीं है। और जो कमाई कर लिया वही कल्प में हमको भोगना है। जब ये बात हम समझेंगे तो हम इधर उधर नहीं देखेंगे, हम अपने स्वमान में रहेंगे कि मैं अपना भाग्य निर्माण कर रहा हूँ। भाग्य विधाता बाप मेरा बाबा है, उसने मुझे श्रेष्ठ भाग्य बनाने का कलम मेरे हाथ में दिया है, मैं अपना भाग्य खुद लिख रहा हूँ। अपना भाग्य लिखते समय मुझे इधर उधर देखना नहीं, सबसे सुंदर भाग्य अभी लिखना है बस। ये बात जब हमारी बुद्धि में रहती है, हम स्वमान में रहते हैं, हम दूसरों की बातों को ध्यान नहीं देते हैं। कोई अगर निंदा भी करता है तो हम ध्यान नहीं देंगे, करते रहो। कोई अगर बहुत मान देकर के हमको हवा में ऊपर उठाना चाहता है तो भी हम ध्यान नहीं देंगे, माना मान देने वाले के प्रति भी हम इंडिफरेंट रहेंगे, अपमान करने वाले के प्रति भी। इसी को कहा जाता है वो श्रेष्ठ अवस्था, जिसको बाबा ने कहा है कि निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान, गीता में भी लिखा है स्थित प्रज्ञ। और स्वमान का अभ्यास वो है जो हमको निंदा और स्तुति दोनों सिचुएशन में सदा समान रहना सिखाता है। नहीं तो निंदा करने पर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, निंदा करने पर वो सोचने लग जाता है, वो बहुत अपने आप को कमजोर महसूस करता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम सब ने क्या देखा, क्या सुना, ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी भी उन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए उस समय के समाज में लोगों ने कितनी निंदा की बात कही, समाज में ब्रह्मा बाबा की बहुत लोगों ने निंदा की है। इतना तक ब्रह्मा बाबा को कोर्ट से ब्रह्मा बाबा के ऊपर वारंट आता था, केस हो गए। उस समय के न्यूज़पेपर में ब्रह्मा बाबा के बारे में गलत गलत बातें लिखा गया और वो समाचार विदेश तक भी पहुंच गया। आप सोचिए, आज के जमाने में आप हमके हमारे नाम पर अगर कोई न्यूज़पेपर में गलत बात लिखे और वो चारों तरफ फैल जाए तो हमारी स्थिति कैसी होगी, ठीक है ना? कोई अच्छा वाला व्यक्ति भी हिल जाएगा ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी हिले ही नहीं। ब्रह्मा बाबा अपनी चाल में, अपनी शान में, अपनी स्वमान में रहते अपना कर्तव्य करते रहे। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने इन सब बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कभी ब्रह्मा बाबा की स्थिति डाउन नहीं हुई, तो न तो निंदा में हुई न तो स्तुति में हुई। बाबा ने ये सब करके दिखाया। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अपना स्वमान का सदा नशा रहता था कि मैं कौन, मैं वो आदि पिता ब्रह्मा, मैं शिव बाबा का राइट हैंड बच्चा, मैं शिव बाबा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। शिव बाबा मुझे निमित्त बनाकर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करा रहे हैं। मैं वो पायोनियर हूँ, मैं वो आदि हूँ। अपना रोल क्या था ब्रह्मा बाबा ने समझ के उस हिसाब से ही अपने मन को बना लिया और उस हिसाब से ही अपना कर्तव्य करते रहे। ये था स्वमान का कमाल। मम्मा के लिए भी हम देखते हैं, मम्मा आई तो छोटी सी कन्या थी, लेकिन जब बाबा ने डिक्लेयर किया कि यही वो माँ है, जगदम्बा है, यज्ञ माता है, बाबा ने जो मान दिया, यज्ञ माता का टाइटल दिया, सम्मान दिया, और मम्मा ने उस सम्मान को स्वमान के रूप में स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं यज्ञ माता हूँ। इस यज्ञ के पूरे कारोबार को संभालने के लिए निमित्त बाबा ने मुझे माता बनाया। ये बात जब दिल ने एक्सेप्ट किया तो तुरंत ही मम्मा के जीवन में मातापन के वो भाव भाव दिखाई देने लग गए। थी तो कन्या ना, थी तो छोटी कन्या ना, परंतु उनके अंदर मातृत्व भाव आने लगा। कैसे आने लगा? उनके मन में आ गया। उनके दिल ने बात को स्वीकार कर लिया। उनके दिल ने शिव बाबा का दिया हुआ ये सम्मान स्वीकार कर लिया। बाबा का दिया हुआ सम्मान स्वमान के रूप में जब बुद्धि में बैठ गया और तुरंत ही उसके हाव भाव में, चेहरे चलन में, सब कुछ में परिवर्तन आ गया, मातृत्व भाव आ गया, जिसके कारण उनके एक उम्र वाले अन्य दादियां भी थी, वो भी उनको स्वतः ही मम्मा कहने लगी। यज्ञ वत्स सभी के मुख से माँ निकलने लगा, यहाँ तक ब्रह्मा बाबा भी मम्मा कहते थे। तो क्या कमाल है, क्या बात है। मम्मा की लौकिक माँ भी थी यज्ञ में, वो भी उनको मम्मा कहने लग गई। तो स्मृति, माइंडसेट चेंज हो गया ना, स्वमान से स्मृति बदल गया, स्मृति से वो सामर्थ्य आने लगी, उनके अंदर वो विचार, वो सब एक्टिविटीज होने लगे। इसलिए हमें भी क्या सोचना है कि मैं कौन हूँ। आप सब भी कौन, अपने आप को क्या समझते, मैं कौन हूँ? मैं पवित्र ब्राह्मण, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा की संतान हूँ, शिव बाबा द्वारा सिलेक्टेड आत्मा हूँ, भले गृहस्थी हैं, भले नौकरी वाले हैं, भले धंधा नौकरी बिजनेस कुछ भी करना पड़ता है, वो नाम मात्र है। लेकिन क्या सोचना, ये तो शरीर निर्वाह अर्थ है, परंतु रियल मेरा क्या ऑक्यूपेशन है? मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा का मददगार हूँ, ब्रह्मा की सहस्र भुजा में से एक भुजा मैं हूँ, नई दुनिया की स्थापना के कार्य का मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब अपने आप को ऐसा समझेंगे, ये स्वमान, ये बाबा ने दिया हुआ सम्मान है, उस सम्मान को मेरा मान समझ के, स्व का मान मेरा मान समझेंगे, और उसको दिल से स्वीकार करेंगे तो सदा ये स्मृति आपके अंदर बनी रहेगी। फिर घर में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी अन्य गृहस्थी जैसा आप नहीं चलेंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन होगा, विचारों में, भावना में, बोल में, कर्म में, हाव भाव में, सब कुछ में एक अलग सा ही श्रेष्ठपन दिखाई देगा। आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते, धंधा करते, अनेक लोगों के बीच में काम करते हैं, वहां भी आपकी अलग सी एक पहचान होगी। जो स्वमान में रहते हैं और अपने नौकरी धंधा करने जाते हैं, वो दूसरे कॉलीग से अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, और दूसरे लोग भी उनको उस दृष्टि से देखने लग जाते हैं। ठीक है ना? एक ऑफिस में एक छोटा सा भी कर्मचारी बाबा का बच्चा होगा और उसके ऊपर सीनियर बहुत लोग होंगे, लेकिन बाबा का बच्चा स्वमानधारी होगा तो सीनियर लोग भी उस जूनियर कॉलीग को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और वो अपने आप को सोचेगा, इस सारे ऑफिस के अंदर शांति दूत कोई है तो वो मैं हूँ, इस पूरे ऑफिस का एक जिम्मेवार पिलर कोई है तो मैं हूँ, इन सब के बीच में से भगवान का प्यारा कोई है तो वो कौन है, वो मैं हूँ। अपने आप को इस प्रकार की स्मृति से बूस्ट अप करेगा और सचमुच उनके व्यवहार में वो चीज पाएंगे लोग, और लोग उनको अलग ही दृष्टि से देखेंगे, सम्मान से देखेंगे, उनकी हर बात में वो सहयोग देंगे, उनके द्वारा शांति पाने की आशा रखेंगे। ऐसा ही हम सब देखते हैं, कोई भी एक ऑफिस में, कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट में कोई बाबा का बच्चा काम करता है, जॉब करता है, तो लोग वहां पर जब भी किसी की कोई तकलीफ होती, दुख होती, उसके पास जाते हैं, कहते आपके पास आके थोड़ी देर बैठने से शांति का अच्छा अनुभव होता है, आपको अपना कोई भी दुखड़ा का बात सुनाने से हमारा दुख ही दूर हो जाता है, आपके सामने आके बताने से आप तो भगवान तक पहुंचा देते हैं और सचमुच हमारी हर संकल्प पूरी हो जाती है, आप तो हम सबके आशा के, भरोसा के पात्र हैं, ये बात फील करते हैं दूसरे लोग। कैसे फील करते हैं, क्यों फील करते हैं, किसके द्वारा फील करते हैं? जो अपने आप को ऐसी स्मृति, ऐसी स्वमान में रखते हैं, अपने आप को दूसरे जैसा नहीं सोचेंगे, मैं अलग हूं, तो ये अलग पहचान ही एक स्पेशल पहचान है जो बाबा के बच्चों की पहचान है। इसलिए हमें सदा देखना है, भले हम दुनिया में रहते हैं, घर संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन क्या हमारी पहचान दूसरों से अलग है या हम उनके साथ उन जैसे ही हैं? अगर हमारे विचार उन जैसे ही हों, हमारी एक्टिविटीज उन जैसे ही हों, तो उनमें और हमारे में तो कोई फर्क रहा ही नहीं। फर्क तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वो फर्क आ जाता है हमारी स्मृति से, अंदर में स्मृति जितना स्ट्रांग होगा कि मैं बाबा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं शांति दूत हूँ, ये स्वमान, एक एक स्वमान का अभ्यास करने पर हमारे अंदर में आत्मा की शक्ति जितनी जागती रहती, उतने हमारे चेहरे में चमक सा दिखाई देता है, हमारे चेहरे में एक ज्योति दिखाई देती है, हमारे चेहरे में एक संतुष्टता का एक आभास दिखाई देता है, हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और कोई झगड़ा करने वाले, कोई गुस्सा करने वाले हमारे आसपास आते ही शांत हो जाते हैं, कोई व्यर्थ सोचने वाले का सोच भी बंद हो जाता है हमारे आसपास आते ही। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना? ये स्मृति हमें सदा मदद करती है, हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाती है, स्वमान हमको बहुत सारी समस्याओं से बचाती है। एक बार मैंने एक भाई को देखा आसाम के, वो एकदम गांव में रहता था, और उसके घर में एक बार डाकू आ गए थे, और वो बाबा का बच्चा था, उम्र वाला भाई था, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन बाबा के प्रति निश्चय बुद्धि, सदा स्वमान में रहने वाला। तो डाकू कोई गलती से शायद उनके घर में रात को आ गए डाका डालने के लिए, और उन्होंने बहुत खोजबीन किया घर में, रुपए पैसे धन संपत्ति खास तो मिला नहीं, इसलिए उनको गुस्सा आया था और उन्होंने बंदूक दिखाया गोली मारने के लिए उस भाई को। तो बीच रात को आए थे जब गोली मारने के लिए, दो ये दो, धन दो, पैसा दो, सोना दो मांगा, उसने कहा ये नहीं ये नहीं। जब नहीं बोला तो वो लोग ने सोचा बंदूक दिखा के लेना है, तो बोला कि मारेंगे तुमको, बंदूक मारेंगे, निकालो। उसने कहा ठीक है मारो, लेकिन इतने में उसको याद आया बाबा का बैज, तो उसका जो कुर्ता पहना हुआ था भाई का, कुर्ता में बेज लगा हुआ था, कुर्ता उसने खोल के दूसरे कमरे में रखा था तो बेज उसमें था, और उसने उसी समय डाकू को कहा एक मिनट रुक जाइए, मरना है तो अपने बाबा के साथ मरूंगा, एक मिनट रुक जाइए, मरना है तो अपने बाबा के साथ मैं बाबा को ले आता हूँ। लोगों ने सोचा बाबा माने इसका भी कोई बुढ़ा बाप होगा, तो बोला ठीक है जल्दी ले आओ। तो अंदर में गया और जाके वो तो कुर्ता डाल के आ गया, कुर्ता डाल के आया तो लोगों ने कहा है तुम्हारा बाबा, तो उसने कहा ये हमारा बाबा है, बैज दिखा के कहा ये हमारा बाबा है, हम इसकी संतान है, ये हमारा बाबा है, मारना है तो बाबा के साथ मारो, मैं अकेले नहीं मरूंगा। तब डाकू के हाथ का बंदूक भी रुक गया, वो लोग सोचने लगे बाबा बाबा कह रहा है, कौन बाबा दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूछा आप किसकी बात बोल रहे हैं, बोला ये मेरा शिव बाबा, ये हमारा बाबा, ये आपका भी बाबा है। तो वो लोग तो आश्चर्य हो गए, वो लोग का जो उग्र मूर्ति था वो शांत हुआ, उन्होंने कहा अच्छा क्या है भाई बात बताओ, तो बोला आप सुनना चाहते हो बैठो। तो उस रात को 1:30 बजे उस गांव का घर है, उसने उन लोगों को कोर्स का किताब खोल करके डाकू लोगों को समझाया कि ये कौन है, ये शिव बाबा है, ये शिव बाबा है, मैं उसकी संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे मारने पर भी मैं नहीं मरूंगा, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, आप सब भी आत्मा हो, आप भी इतने बड़े ज्ञान गुण शांति के सागर भंडार बाबा के धनवान बाप के बच्चे हो, आप आज धन के लिए ये डकैती कर रहे हो, लेकिन आप कौन हो, ऐसे ऐसे जब उसने बताया, जो डाकू लोग थे वो भी आश्चर्य हो गए, वो भी खुश हो गए, उन्होंने कहा हमको भी मिल सकता है ये ज्ञान, बोला जरूर मिल सकता, तो बोला हम तो ऐसा काम करते हैं हमको कौन ज्ञान देगा, बोला कोई बात नहीं आप भी तो आत्मा हो, आप भी तो हमारे भाई हो, हमारे सेंटर पर आ जाओ आपको ज्ञान मिलेगा। तो वो डाकू लोग क्या किया, ठीक है माफ करना हम लोग गलती से यहाँ पर आ गए थे, लेकिन हमें ज्ञान मिल गया, हम खुश होके जा रहे हैं। तो देखिए जब बंदूक आपके ऊपर कोई उठाए, उस समय भी आप नशे से कह सको कि मेरा बाबा शिव बाबा है, मैं उसकी संतान हूँ, ये कौन कह सकता है जो उस नशे में रहता है। वो बुढ़ा भाई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, गांव का रहने वाला, परंतु उसको स्वमान था मैं कौन हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, हर हालत में मरते दम तक भी मुझे बाबा का ही परिचय किसी को देकर जाना है, तो बच गया ना। बाबा बाबा कहा, उसने बाबा का बैज दिखाया और वो डाकू के हाथ से बच गया, बल्कि उन सबको ज्ञान दे दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप ये कभी नहीं भूलो कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप डाकू के सामने आ गए हो या चोर के सामने आ गए, ठग के सामने आ गए हो, किसी के भी सामने आ गए हो, आप अपनी स्वमान को याद रखो कि मैं कौन हूँ। कोई भी स्वमान, बाबा का मिला हुआ इतना हजारों लाखों स्वमान है, कोई भी स्वमान याद रखो, स्वमान क्या नहीं कर सकता। हमारे सूरज भाई कितना अच्छा बताते हैं, वो कहते हैं किसी को भी कोई समस्या आती, कहते हैं मुझे ये समस्या आई, वो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान का अभ्यास करो। कोई कहते हेल्थ का प्रॉब्लम है, सूरज भाई बोलते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये स्वमान को आप रोज एक सप्ताह तक अभ्यास करो। किसी को कहते मन का प्रॉब्लम है, कहते वो ये मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास करो। कोई कहता नींद नहीं आता, कहते मास्टर सर्वशक्तिमान हो उसका अभ्यास करो। माना हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किसमें बताते हैं, वो और कोई नुक्से तो नहीं बताते हैं, वो बाबा ने दिया हुआ समाधान ही सबको बता देते कि आप स्वमान का प्रैक्टिस करो। स्वमान का अभ्यास करते करते आत्मा को किस शक्ति की जरूरत थी, वो शक्ति उसमें आने लग जाती है। इसलिए स्वमान का प्रैक्टिस हमारी आत्मा को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने का एक सहज सरल तरीका है। कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी मुरली तो पढ़ते हैं लेकिन सारा मुरली भूल जाते हैं, एक भी याद नहीं रहता। हाँ, कई कहते हैं, हम में से ऐसा बहुतों का शिकायत है, सारा मुरली सुन लिया लेकिन एक भी बात याद नहीं रहता, क्या करूं। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, बात यही है कि हमें कोई न कोई स्वमान को अमृत वेले से ही याद रखना है और उसको दिन में कई बार सोचना है गहराई से। अगर हम सारी मुरली भूल भी जाएं, स्वमान ही बुद्धि में याद रहे तो भी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए स्वमान की लिस्ट बना के रखना है। इसके अलावा रोज की मुरली से आज की मुरली में से क्या स्वमान निकला, वो खुद ही निकाल करके उसके ऊपर चिंतन करना है। चिंतन करे भी अगर केवल रिपीट करेंगे उसकी शक्ति नहीं आएगी, इसलिए गहराई से थोड़ा चिंतन करेंगे उसकी शक्ति हमारे अंदर भरती जाएगी और पुरुषार्थ भी सरलता से आगे बढ़ता जाएगा। ओम शांति।